बता दूं, वैशाली ने धीरे से अपनी एक उंगली शत्रुपा देवी के गालों को छूते हुए पूछा। शत्रुपा देवी ने तेजी से अपना चेहरा पीछे किया। तेरा वो बड़ा पोता था ना अखिल, बड़ी मुश्किल से शत्रुपा देवी के होठों से निकला। हाँ हाँ वही, बोलते हुए वैशाली ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कि उसका मुंह कड़वा हो गया हो। अखिलेंद्र, उसके रहते मैं अपने राणा सा को अकेले नहीं पा रही थी। उसका तो मेरे साथ जैसे जन्म जन्म का बैर है, पिछले जन्म में भी वैसा ही था। वो जब भी मुझे उनके आसपास देखता था तो मुझे दूर कर देता था। तुझे पता है, वो शुरू से ही हमारे राणा सा का मुंह लगा दोस्त, उनका प्रधानमंत्री, सेनापति और न जाने क्या क्या बना बैठा रहता था। मुझे तो ये राजनीति समझ में ना आती सीधी। अच्छे खासे अपने कबीले के मुखिया की बेटी हूँ, पर कहता था इस लड़की का कोई जात धर्म नहीं, राह चलती लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर राणा सा, बलि हारी जाऊं मैं उन पर। वो न सिर्फ मेरी सहायता करते थे बल्कि मुझ पर भरोसा भी करते थे। वो तो ये पूरा राजगढ़ रियासत संभालते थे, पर वो दाहिना हाथ उनका बन बैठा था। सबसे तो वो हमारे राणा सा का अंगरक्षक था। पहले तो मैं उसको कुछ बोल ना पाया करती थी, क्योंकि हमारे राणा सा की सुरक्षा अपनी जान पर खेल के वो करता था, तो भला वो मेरा दुश्मन कैसे होता। लेकिन अब तो मैं सक्षम हो गई हूँ। मेरे रहते मेरे राणा सा को दूसरे आदमी की क्या जरूरत, और ना ही उनकी रानी की। बड़ा दुख दिया था उनकी ब्याहता रानी और उनके इस मुंह लगे दोस्त ने मिलकर मुझे। मुझ मासूम को बहुत तड़पाया, इसलिए उसे मैं रास्ते से हटाना चाहती थी। और पता है तुझे, तूने ठीक किया उसको यहां से हटा दिया, इसलिए तो मैं तेरी पूरी पक्की एहसानमंद हूं, वैशाली बोली। शत्रुपा देवी ने बड़े ही दुख और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों के आगे एक 16 साल के लड़के का चेहरा घूम गया था। वो बड़ा चतुर आदमी है, हम जहां तक सोच ना पाते उससे पहले का वो काम कर जाता है। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं देता। और उसके यहां से जाने के बाद मुझे अच्छी तरह से अपनी शक्तियों को समझने, जानने और उन्हें इकट्ठा करने का मौका मिल गया। वरना जब तक वो यहां था, पता नहीं कैसे पहुंच जाता था हर जगह। अच्छा किया जो तूने धक्के मारकर अपनी आंखों से दूर किया था। आप समझ नहीं रही हैं बड़ी मासा, मेरे भाई को खतरा है। पहले तो तुम मुझे बड़ी मासा मत बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी नहीं। और दूसरी बात, मैं जानती हूं कि उसे किससे खतरा है। उसे सिर्फ तुमसे खतरा है। तुम सोचते हो कि अभिमन्यु की पहली संतान होने के कारण मैं तुम्हें ये रियासत सौंप दूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी माँ को मैंने ना कभी स्वीकार किया था और ना ही तुम्हें कभी स्वीकार करूंगी। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। निकल जाओ अब मेरे घर से, क्योंकि अब अभिमन्यु भी नहीं यहाँ जो मुझे तुम्हें यहाँ से निकलने से रोक सके। शत्रुपा देवी ने नफरत से करते हुए मुंह फेर लिया। आज उनकी यही नफरत उन पर भारी पड़ रही थी, जिसने न केवल उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था बल्कि न जाने कितनी जान ले ली थी, और कितनी जान के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही थी। क्या हुआ शत्रुपा, याद कर रही है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? अरे तू जिसको सोच रही है मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। मैं तो अपने राणा सा को जन्म के साथ ले जाती, लेकिन वही रोड़ा बनाकर अटक गया। इस जन्म में तो वो तेरा ही बड़ा पोता बनकर आया है, पर है मंदिर के बड़े पुजारी का बेटा है, इसलिए उसे हर काम में अपनी ही चलाने की आदत है। अच्छी बुरी चीजों को देखते ही समझ जाता है। इस बार भी वैसा ही चाह रहा था कि मुझे कूपे के अंदर बंद कर दे, पर अब मैं उस कूपे के अंदर नहीं आने वाली। इतना मुंह बना बनाकर वैशाली बोल रही थी और शत्रुपा देवी को उसकी बातें डरा रही थी। लेकिन अचानक से वैशाली ठहाका मारकर हंसी। आजा आजा, मैं तेरी बलाइयां ले लूं। उसने बिल्कुल बंजारन औरतों की तरह शत्रुपा देवी की बलाइयां लेकर अपने सर पर लगा ली। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया था, इसलिए तो मैंने तुझे इतने दिनों तक जिंदा रखा, पर अब लग रहा है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम्हें जिसका इंतजार है उसको देखने का मुझे भी तो है। तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ तो मेरे इंतजार का भी तो सोचो, मुझे एक बार मेरे विक्रम से मिलने दो, शत्रुपा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वैशाली की बातों से बहुत कुछ उनके दिमाग में घूमने लगा था। सब कुछ शांति से जा रहा था अगर उनके पति ने वो गलती ना की होती तो। उन्होंने ही राजगढ़ पैलेस में रिनोवेशन का काम शुरू करवाया और उसी दिन उनके हाथों से वो दुर्घटना हुई। उन्होंने ही पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने के क्रम में कुएं पर भी बुलडोजर चलवा दिया था और इस तरह से ये आजाद हो गई थी। इसके बाद लगातार उनके नए पैलेस में भी मुसीबत का आना शुरू हो गया था। उनकी मौत के बाद सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद उनके बेटे अभिमन्यु का बार बार उस पैलेस की ओर आकर्षित होना, खासकर एक ही जगह जाकर रुकना और उसके दिमाग में भी इसी रिनोवेशन का काम आना। शत्रुपा देवी जानती थी कि उन लोगों ने छुपकर कोई ना कोई काम जरूर ऐसा किया है जिसकी कीमत इन दोनों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। पर क्या शत्रुपा देवी इस राज को जान सकेंगी? पर कैसे? क्या वैशाली उन्हें बताएगी? ये सवाल शत्रुपा देवी के दिल में चल रहा था।